दिन भर 26 फरवरी दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कल डाले जाएंगे वोट।
लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें इस सरकार को उठा के हटा देना है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि लोग ये कह रहे हो कि हमें इसी सरकार को वोट दोबारा से सरकार में सत्ता में रहने देना है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है।
संडे दिन भर में मिलिए आज तारेक फतेह से, जो अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं।
90% मुसलमान 20th सेंचुरी तक अनपढ़ था, जब तक वो पढ़ लिख नहीं सकता था वो इंसान था, पढ़ लिखने के बाद अब उसमें घमंड आ गया, इसीलिए वो वोट बैंक की सियासत करता है।
होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए कल मतदान होना है। इस चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें अमेठी और सुल्तानपुर जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि वोट के लिए धार्मिक भावना का इस्तेमाल करना सही नहीं है और इससे पहले जारी की गई सूचनाओं को पार्टियों ने दरकिनार किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली में श्मशान और कब्रिस्तान को लेकर बयान दिया था। इसके अलावा ईद और दिवाली में बिजली सप्लाई के प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर काफी आलोचना हुई थी। भारतीय सेना में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एक आंतरिक जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है। देश भर में सेना में भर्ती के लिए परीक्षा होनी है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद नागपुर, अहमदनगर, अहमदाबाद और गोवा समेत 6 जगहों पर परीक्षा टाल दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अन्य कई परीक्षा केंद्रों पर भी परीक्षा की तारीख टाली जा सकती है। महाराष्ट्र और गोवा में अब तक पुलिस ने 18 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है। ठाणे अपराध शाखा यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे ने इस मामले में ये जानकारी दी।
9 अक्यूज्ड अरेस्ट किए गए मिले थे। नागपुर में 222 कैंडिडेट्स और 5 अक्यूज मिले थे और गोवा में 49 कैंडिडेट्स और 2 अक्यूज मिले थे। तो इस तरह से 350 कैंडिडेट्स और 18 अक्यूज मिले थे।
ये थे नितिन ठाकरे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुजरात में एंटी टेरर स्क्वाड ने 2 भाइयों को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से कथित संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस ने वसीम और नथीन को राजकोट और भावनगर से गिरफ्तार किया है। एटीएस का कहना है कि ये दोनों आने वाले 2 दिनों के अंदर गुजरात में धार्मिक स्थलों पर हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने कहा कि इन दोनों के पास से बम बनाने का सामान बरामद किया गया है और ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए विदेश में आईएस के सदस्यों से जुड़े हुए थे। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम सथाशिवम ने कहा है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नम के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी डीएनए की जांच अभी बाकी है और इसके लिए पुलिस की मदद ली जा सकती है। किम जोंग नम की हत्या मलेशिया में कुछ दिनों पहले कर दी गई थी। सुब्रमण्यम सथाशिवम ने इस बारे में ये जानकारी दी।
I think now we are more or less completed with the announcement by the chemistry department.
रसायनिक विभाग ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और जिस रसायन का इस्तेमाल किया उसकी पहचान कर ली है। हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। ये रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी जाएगी। मौत की वजह जानने के लिए ये जांच की गई थी। ये थे मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम सथाशिवम के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी सेना ने पश्चिमी मोसुल में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत शहर के 2 जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। इराकी सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट की जवाबी कार्रवाई में मामून और तायरान इलाकों में आत्मघाती कार बम धमाके किए गए, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। इराकी कमांडरों का कहना है कि मामून से पिछले 2 दिनों में हजारों आम लोग भाग गए हैं। इसके अलावा इराकी सेना के सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा के पास हमले किए हैं। सेना को असलह की कमी हो गई है और 10 से ज्यादा इराकी सैनिकों की मौत की खबर है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में मतदान हो चुका है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में मतदान होना बाकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों में मतदान हो चुका है, 3 चरण बाकी हैं अभी, और उनमें से 5वें चरण में कल 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 6वें और 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य अब पूर्वांचल की ओर केंद्रित हो गया है। इस बीच चुनाव आयोग की तमाम सख्ती और निर्देशों के बावजूद धर्म और जाति की चर्चाएं नेताओं के भाषणों और रैलियों में लगातार सुनने को मिल रही हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र ने ये रिपोर्ट भेजी है।
5वें चरण में पहले 52 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन अकबरपुर की अलापुर सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण अब 51 सीटों पर ही मतदान होंगे। मतदान के लिए जहां चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं राजनीतिक दल भी रैलियों और सभाओं के बाद मतदान केंद्रों पर अपनी मजबूती की रणनीति तय करने में लगे हैं। यूं तो इस चरण में भी कई महत्वपूर्ण नेताओं और मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, लेकिन इस चरण की कई सीटों का प्रतीकात्मक महत्व भी है, मसलन अयोध्या और अमेठी। पिछले कई चुनावों से ये भी देखने में आया है कि इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी के हाथ में ही सत्ता की चाबी जाती है, चाहे बात 1991 में बीजेपी को मिली 40 सीटें हों या फिर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटें हों। 2012 के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने इस चरण के 4 जिलों बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती और सुल्तानपुर में सभी सीटें जीती थी। इस बीच चुनाव आयोग की लगातार सख्ती और कार्रवाई के बावजूद चुनावी भाषणों में धर्म और जाति का जिक्र हो रहा है। यहाँ तक कि आयोग ने पत्र लिखकर ऐसा न करने की राजनीतिक दलों से अपील भी की है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसा करना राजनीतिक दलों की विवशता है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
किसी को नहीं लग रहा कि उसकी सरकार बन रही है, सारे राजनीतिक दल इंपेशेंट है, तो वो सोच रहे हैं कि ये एक ऐसा आधार है, ये एक ऐसा आकार है, ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा प्रहार होगा जिसमें उन्हें सरकार बनाने या खड़े होने का मौका मिल जाएगा, एकजुट करने का लोगों को मौका मिल जाएगा।
योगेश मिश्र कहते हैं कि राजनीतिक दल इसका भी फायदा उठाते हैं कि चुनाव आयोग के पास कार्रवाई के लिए कोई ज्यादा अधिकार भी नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ने इन कामों के लिए आजादी के बाद से आज तक पनिश किया है क्या किसी को? यही इलेक्शन कमीशन ने पिछले इलेक्शन में मायावती जी के हाथी ढकवा दिए थे। इस इलेक्शन में हाथी क्यों नहीं ढके गए? 4 चुनाव जीत जाने के बाद आपको समाजवादी शब्द याद आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो इतना डायसी है और उसके पास अधिकार इतने सीमित हैं कि लोग ये समझ गए कि ये कुछ भी नहीं कर सकता है।
इस बीच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जहां इलाहाबाद में केस दर्ज किया गया, वहीं राज्य सरकार की एम्बुलेंस गाड़ियों से समाजवादी शब्द को ढकने के निर्देश जारी किए गए। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव की जमीनी खबरें बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव भी आप तक पहुंचाते रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले उनसे बात की और अब तक हुए चुनाव में उन्होंने क्या देखा, सुना, जाना, समझा आग्रह किया कि हमारे श्रोताओं को भी बताएं।
संदीप, ये जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है 2017 के, ये अपने आप में बड़े यूनिक इसलिए है क्योंकि पिछले 2-3 जो चुनाव मैंने विधानसभा के खासतौर से उत्तर प्रदेश में कवर किए हैं उनके कंपैरिजन में इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है उत्तर प्रदेश में। यानी जब जब चुनाव होते रहे, चाहे हम 2012 का चुनाव की बात करें जिसमें मायावती के खिलाफ एक लोगों में रोष सा दिख रहा था, या उसके पहले की बात करें जब सपा गवर्नमेंट के खिलाफ रोष दिख रहा था, वो इस बार चुनाव में नहीं दिख रहा है। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें इस सरकार को उठा के हटा देना है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि लोग ये कह रहे हो कि हमें इसी सरकार को वोट दोबारा से सरकार में सत्ता में रहने देना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, जो ये चुनाव अभी तक 4 फेज जो हुए हैं यूपी में, उनका जो प्रतिशत है वो खासा बेहतर रहा है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक 4 जो चरण हुए हैं उसमें मुद्दे जो हैं वो क्लियरली ऊपर उठकर एक कोई बड़ा मुद्दा या 2 बड़े मुद्दे, किसी एक भी पार्टी की हम बात करें, चाहे बीजेपी की करें, चाहे बसपा की करें, चाहे सपा की करें, चाहे कांग्रेस की करें जो सपा के साथ है, किसी के पास एक मुद्दा नहीं है। अगर बीजेपी आज कहती है कि साहब नोटबंदी जो है हमने लागू कर दिया, तो अगले दिन बीजेपी फिर बात करती है कैराना की, बीजेपी बात करती है तमाम ऐसे मुद्दों की जो उनके मैनिफेस्टो में शायद नहीं रहे, या कभी कोई राम मंदिर की बात कर देता है। अगर समाजवादी पार्टी बात करती है कि साहब हमने 8-lane 10-lane सड़कें प्रदेश में बनवा दी हैं जिन पे हवाई जहाज लैंड कर सकता है, तो अगले दिन समाजवादी पार्टी बात करती है कि जो मुस्लिम समुदाय है हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम वो भी हमें प्रिय हैं और हिंदू भी हमें प्रिय है। मायावती कभी कहती हैं कि साहब हम जो है हमारी सरकार आएगी तो सबसे बेहतरीन प्रशासन हम देंगे, उसके अगले दिन मायावती ये कहती हैं कि साहब इस बार मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम कोई बुत कोई मूर्ति निर्माण नहीं करेंगे। तो यानी किसी भी पार्टी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ज्यादातर पार्टियां, अगर मैं ये कहूं कि चार फेज के बाद अभी खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि वो दरअसल जमीनी हकीकत पर कितनी सीटों पे इन चार चरणों में खड़ी हुई है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अभी वो खुद भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि दरअसल वो जो आखिरी समीकरण बैठेगा, जो आखिरी सीट लिस्ट निकल के आएगी नतीजों के बाद, उसमें वो कहां फिगर आउट करेंगे किसके पास कितनी सीटें होंगी।
एक बात बताइए नितिन, हम देख रहे हैं कि डिंपल यादव जो पिछले लोकसभा चुनावों में बमुश्किल पर्चा देखकर भाषण देती हमने देखा सुना है उनको, और इस बार वो काफी मुखर होकर काफी चुनावी रैलियां कर रही हैं और उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ असर होगा इस बार के विधानसभा चुनावों में डिंपल यादव की सक्रियता का, या इसे आप कैसे देखते हैं?
उसको इस तरह से हम देते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो स्टार प्रचारक हैं, जो इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसमें सिर्फ दो ही हैं, एक अखिलेश यादव है या डिंपल यादव है। और जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे थे वो आजम खां है, वो रीजन स्पेसिफिक प्रचार कर रहे हैं, या राम गोपाल यादव है, वो थोड़े पर्दे के पीछे से रह के प्रचार कर रहे हैं। तो यही दो लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डिंपल यादव में मैच्योरिटी आई है पिछले 6-8 महीने में, समाजवादी परिवार में जो कलह हुई है और कैसे उन्होंने अखिलेश का साथ दिया है उसमें, और बकौल अखिलेश के खुद डिंपल यादव काफी एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही है, काफी मैच्योरिटी डिंपल और अखिलेश दोनों में दिखी है। लेकिन साथ ही संदीप ये बताना बहुत जरूरी है कि और जो तमाम नेता दिख रहे हैं फील्ड में, उनमें भी वो लोग भी काफी बड़ी संख्या में क्राउड यानी बहुत दर्शक और जनता को जुटा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह हो, चाहे खुद मायावती हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इवन केपी मौर्य जो भाजपा के नेता हैं भीड़ जुटा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये चूंकि इतना बड़ा प्रदेश 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी का प्रदेश, वहां का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भीड़ जो है उसको मेरे ख्याल से चुनाव में मतदान का पैमाना मानना थोड़ी शायद अभी जल्दबाजी होगी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो चाहे भाजपा की बात हो।
11 मार्च को ही पता चलेगा कि जो भीड़ उमड़ रही है वो कितना वोट में बदल पाती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी से दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारत में इस समय वक्त हुआ है 7:42। आज है रविवार और इस रविवार संडे दिन भर में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तारिक फतेह से। तारिक फतेह पाकिस्तान में पैदा हुए, उन्होंने मुस्लिम कनेडियन कांग्रेस की स्थापना की है और वो इन दिनों भारत में हैं। अपने कई बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। तारिक फतेह से बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
तारिक साहब आपका स्वागत है प्रोग्राम में।
थैंक यू, धन्यवाद।
तो आपने एक बात कही कि मुसलमानों को आम तौर से और खास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस्लाम के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, जानकारी नहीं है।
90% मुसलमान 20th century तक अनपढ़ था, इलिटरेट था। जब तक वो पढ़ लिख नहीं सकता था वो इंसान था। पढ़ लिखने के बाद अब उसमें घमंड आ गया और विक्टिमहुड का सेंस आ गया, इसीलिए वो वोट बैंक की सियासत करता है। यानी खुद कह रहा है कि हमें बैकवर्ड माना जाए। इस्लाम तो आया था तैमूर के घोड़े पे, 50,000 हिंदू तो न्यू मरवा दिए हमने दिल्ली में, बच्चों के नाम रख रहे ना अब तैमूर। किसी हकीम ने कहा था टैगोर अली खान हो जाता नाम तो क्या बात बनती, आपने तो तैमूर अली खान ही कहा ना। और
नाम से याद आया, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया दिल्ली में तो लोगों ने कहा कि आप की सलाह थी।
मैंने तो सीधा कहा था कि काला अगर नहीं चेंज करेंगे मैं काला पेंट लूंगा और जहाँ जहाँ कातिल का नाम होगा मैं उस पर काला पेंट डाल दूं।
तारिक साहब अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली में एक और
डलहौजी,
उसमें तो उनके भाई का नाम
है, तो भाई भाई
वो भी तो आक्रमणकारी थे।
क्या मतलब थे?
वो भी तो हमलावर थे।
दारा शिकोह को हमलावर दारा सर सर मेरी भाईया
उनके भाई थे औरंगजेब।
अरे उसी का तो गला काटा था उस कातिल ने और प्लेट पे ले आया था।
औरंगजेब से प्रॉब्लम है, दारा शिकोह से नहीं। आपको
क्यों होगा? उसने तो उपनिषद ट्रांसलेट की, वो तो हमारा पंजाबी था, लेकिन लाहौर का था।
आप पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा 2013 में
1963 से हूं मैं चर्चे में, आवाज नहीं आई थी
हिंदुस्तान में 2013 से आपके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और औरंगजेब का जब
इसमें मेरा कसूर नहीं कि आप तक खबर नहीं
उस वक्त कहा थे उससे पहले कहा
मैं तो जेल में बैठा हुआ था।
कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है तब से आप यहाँ पर आकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं ताकि आप जो है
भारतीय जनता पार्टी के ही थे फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद और भारतीय जनता पार्टी के ही थे शशि थरूर जिन्होंने इन्वाइट किया था मुझे। आप लोगों की तंग नजरी का कसूर मैं नहीं हूँ।
आपको कुछ और साथियों से जोड़ते हैं,
जरूर
सवाल है राजेश जोशी
जी, बताएं क्या। बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो कुछ श्रोता यहाँ सुन रहे हैं उनकी तरफ से एक सवाल,
प्लीज,
हालांकि उन्होंने मुझे इसका अख्तियार नहीं दिया है,
नहीं, नहीं,
वो अख्तियार मैंने उनसे ले लिया है।
ले
सवाल ये है मेरा आपसे कि हमारे एक पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी
जी।
सुब्रमण्यम स्वामी जो है
जी,
उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपना वो निशाना तय करते हैं और फिर हमला बोलते हैं और सेलेक्ट करके निशाना तय करते हैं। वही बात आपके बारे में भी कही जाती है कि आप सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं और फिर उस पर हमला हमला करते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी बड़ी वाहवाही होगी, अगर आप हिंदुस्तान
मेरी वाह वाह
जी 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 अगर आप अगर आप हिंदुस्तान में इस्लाम पर तनकीद करेंगे मुसलमानों पर तनकीद करेंगे तो लोग बड़े खुश होंगे। आप क्या वाकई निशाना साध के गोली दागते हैं?
बिल्कुल, इसमें क्या इतराज है आपको? अरे जो चोर है उसको तो निशाने में मैं लूंगा ना।
आपकी डेफिनेशन से जो चोर होगा वही चोर होगा क्या?
आप अपना चोर मुतय्यन करें, मैं अपना करूंगा।
आप लेकिन
जिसने दारा शिको की गर्दन काटी वो चोर,
वो तो इतिहास की बात है।
इतिहास आज है,
इसी वक्त
आज है, 1000 साल से इतिहास हो रहा।
आप कहते हैं अपने आप को 5000 साल पुरानी जो हिंदुस्तानी तहजीब है उसका आप
हिस्सा
मानते हैं अपने आपको?
आप नहीं मानते,
मैं वो तो मेरे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपका इंटरव्यू। मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल
पूछूंगा।
कन्वर्सेशन, जो गड़बड़ियां आपको पाकिस्तान में दिखती हैं, इस्लाम में दिखती हैं, मुसलमानों में दिखती हैं, वो गड़बड़ियां आपको दीगर जो मजहब हैं उनमें दिखती है? फिर एक के बाद हम बात कर ले,
बात कर ले। डॉक्टर तुगाड़िया की बात कर सकते हैं,
क्या बताएंगे उनके बारे में आप? विश्व हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया के बारे में
मुझे बड़ा डर लगता है।
क्या तासुरात क्या?
मेरे तासुरात ये हैं कि जिन लोगों पे उनका वो ऑपरेशन करते हैं मुझे उनसे डर लगता है कि उनका हशर क्या हो सकता, क्योंकि वो खास तौर पे बड़ा तासुब पसंद आदमी। लेकिन तोगड़िया साहब जो है वो 9/11 की टावर्स पे अटैक नहीं किया उन्होंने आज तक, अगर उन्होंने किया होता तो मैं उनकी ऐसी तैसी करता। उन्होंने बाली में बम्बिंग नहीं की, तोगड़िया साहब ने मुंबई पे हमला नहीं किया,
वो हिंदुस्तानी मुसलमान तो नहीं थे।
आपने एक वाहिद फर्क यानी एक शख्सियत
एक
को नाम लिया,
हाँ।
प्रवीण तोगड़िया,
हाँ।
आप प्रवीण तोगड़िया इंसान का नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो अपने
वीएचपी हाँ, मैं कह रहा हूँ।
जब आप वीएचपी की बात करते हैं तो आप आरएसएस की भी बात करेंगे?
बिल्कुल।
तो आरएसएस के बारे में क्या तासुरात हैं आपके?
आरएसएस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुत्व को लेकर चलती है और आरएसएस की वर्स्ट फॉर्म जो है वो कुछ भी कर लें उसमें यमन में कुछ नहीं हो सकता।
यमन छोड़
अच्छा ना 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 सर मैं बता ना 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 या मेरा जवाब आप नहीं तय कर सकते।
मैं सवाल पूछ
मेरा जवाब हाँ तो आप सुनेंगे जवाब?
मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ,
मेरा जवाब आप नहीं देंगे।
आप जवाब कंप्लीट कीजिए, मेरा सवाल
तो आपने रोका ना मेरा जवाब।
मैं ये कह रहा हूँ कि जब आरएसएस की जब आप बात करते हैं तो आप उसको यमन से जोड़ रहे हैं?
नहीं, हिंदुस्तान
में नहीं हो सकता।
नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अपना हिंदुस्तान का जो वो है इंटेलेक्चुअल वो बंधा हुआ है, उसने पिछले 1000 साल में दरियाए सिंध के उस पार देखा भी नहीं है। आप लोग अंदरूनी इंट्रोवर्ट्स हैं इसीलिए आपको दुनिया नहीं। जो मुसलमान है, इस्लामिस्ट है, जिहादी है, वो तो हिंदुस्तान को एक बाई पार्टिकल समझता है। एक क्यों
उसी के मेरे
मैं जवाब मैं दूंगा सर, सवाल आप करेंगे जवाब मैं दूंगा,
इसके बाद मेरा अगला सवाल
ना आएगा। मैं जवाब कंप्लीट करूं, मैं जवाब नहीं मत रुकेगा। अगर आपको नहीं पता है कि दुनिया दरियाए सिंध के उस पार है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। और जो पूरी वर्ल्ड वाइड इस्लामिक मूवमेंट है वो आपके यहाँ नहीं चल रही, आपने ठेका नहीं लिया हुआ उसका, वो ठीक। और बात है कि इस वक्त आईसिस का जो नेम है दुनिया में वो एक हिंदुस्तानी, आपको नहीं पता उसका नाम, और बात है कलकत्ता में रहे। आपके यहाँ एक मौलवी टीवी पे आके कह सकता है कि फलाने फलाने की गर्दन काट दो, आप लोग यूं करके चले जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है?
यही मैं जो मेरा सवाल था आपसे कि आप अपना सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं और उस पर अटैक करते हैं,
कर रहा हूं।
मारते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जांपल्स, आपको जो दूसरे एग्जांपल्स है जो रोजाना दिन रात इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं,
हाँ।
उस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती है? मसलन
पठानकोट पे किसने
हमला किया? मसलन
वो नहीं, पठानकोट
अभी मेरा सवाल नहीं हुआ सर,
सवाल
मसलन है कि जब गोमांस के खाने पर पूरा विवाद हिंदुस्तान में होता है, उसके कुछ लोग पक्षधर हैं, उसके कुछ लोग मुखालफत करते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। अब जब उसी के बाद उसी मुद्दे पे एक आदमी की लिंचिंग हो जाती है, उसको मार दिया जाता
है। मैंने तो कंडेम किया, आपने नहीं पढ़ा मेरा कसूर?
नहीं, मैंने कहा कंडेम अलग होता है।
ना, ना, क्या
कंडेम करना होता है, लेकिन आपका
नहीं, आप, मेन थ्रस्ट ना, है, मेरा थ्रस्ट,
मेन थ्रस्ट आपका जो है आपके टारगेट्स हैं।
बिल्कुल हैं, इसमें टारगेट्स आपके नहीं होंगे, मेरे हैं,
सब बराबर
नहीं, सब बराबर नहीं है।
आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक थ्रेड है, एक तरह का उनका टेररिज्म है।
एक गजवा हिंद क्या है
ये जब आप
बताएं, आपने पढ़ा गजवा हिंद?
अगर ऐसा होता है,
नहीं नहीं गजवा हिंद पढ़ा आपने?
इंटरव्यू मेरा
नहीं पढ़ा आपने?
मैं
ऐसा मत
करें, सवाल ये है सर,
मैं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा?
सवाल ये है, वो सवाल नहीं है अभी,
क्यों नहीं है? आपको तकलीफ हो रही है, आप जवाब नहीं चाहते तो मुझसे
सवाल ये है कि क्या मुसलमान जो आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को,
नहीं आपस में नहीं मार रहे,
जो पूरे अरब कंट्रीज में और अफगानिस्तान में एक दूसरे
और हिंदुस्तान में
तो आप उसको एक एक मोनोलिथ के तौर पे कैसे कर सकते
हैं? मेरा सवाल आप तय करेंगे एज अ नॉन मुस्लिम कि मैं क्या सोचूं?
नहीं,
आप मुसलमान हैं,
सिर्फ मुसलमान तय करेगा?
और आप तो मुझे कोई बोले नहीं दे रहे, बात कर रहे हैं फिर? मैंने आपसे कहा ना,
ये बताए मोनोलिथ है?
आपने सवाल पूछा नहीं पूछा? पूछ लिया ना, मैं जवाब दूंगा। बात आप भी कर लीजिए, आप भी आ जाएंगे, नेक मुसलमानों में आपका नाम भी आ जाएगा।
छोटे छोटे दो सवाल, आरएसएस से जुड़ा एक सवाल था जो राजेश जी ने कर लिया। आपके बारे में ये इल्जाम है कि आप जो है बदलते वक्त और हालात के हिसाब से अपने स्टैंड बदलते रहते हैं।
मसलन
आप 2006 तक इसराइल की मुखालफत करते थे, जब आपने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस बनाया।
मैं तो हूँ,
उसके बाद
आप नहीं, नहीं, मैंने अब भी करता हूँ।
आप
मैं तो इसराइल की आज करके आया हूँ कि पैलेस्टीनियन एरिया से ऑक्यूपेशन खत्म करो। अरे दूसरी बॉल कीजिए।
आप सद्दाम हुसैन के एक जमाने में सपोर्टर
हुआ करते थे? नहीं था, झूठ बोल रहे हैं आप।
मैं झूठ बोल रहा
हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको, सद्दाम हुसैन का मैं कहाँ से सपोर्ट हुआ ये तो पूछ के आइए ना अपने राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर के, उनके बेटे का नाम सद्दाम हुसैन क्यों है?
जी, हमारी कॉलीग है वो आपसे।
जी,
पाकिस्तान में औरतों के का जो दर्जा है और जो भारत में मुसलमान औरतों की मैं बात कर रही हूँ, औरतों का दर्जा है, उसमें आप क्या फर्क देखते हैं?
पाकिस्तान में और मुसलमान औरतों का दर्जा हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों के दर्जे से बहुत ज्यादा है।
अच्छा,
हाँ,
पाकिस्तान में ज्यादा?
बिल्कुल ज्यादा है। आपके यहाँ जो मुसलमान की औरतें हैं उनका हैदराबाद, यूपी, बिहार में दर्जा बहुत कम है। जो औरतें तमिलनाडु में हैं और केरला में हैं, उनका दर्जा पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर जो भी आपको ये बात कहे कि हिंदुस्तान मुसलमान एक कोई मोनोलिथिक आइडेंटिटी है, ही इज लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड, कि हिंदी बेल्ट है या औरतों का कब्रिस्तान बनाया हुआ है लोगों ने, उनको ट्रीट किया जाता है एज ए प्रोडक्ट। पाकिस्तान में क्योंकि पश्तूनों में और बलोचों में और सिंधियों में ये और पंजाब में भी ना वर्किंग क्लास इतनी कमज़ोर है जितनी आपके यहाँ, और जहाँ फीमेल क्लास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ है, माउंटेनस टेरिटरी, हमारे यहाँ बलोचिस्तान में तो मेन गुरिल्ला फाइटर्स हैं वो लड़कियाँ जो आज़ादी की जंग लड़ी।
एक बात बताएं कि यहाँ पे बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात या सारी पर्सनल लॉज को एक सार बनाने की बात जो की जा रही है, आपको लगता है उससे मुसलमान औरतों को फायदा होगा? Absolutely. और वो लाया जाना चाहिए?
वो मुसलमान औरतें नहीं कह रही कि लाना चाहिए?
नहीं, वो
तो कह रही है ना,
उस पर कोई सहमति नहीं है?
नहीं नहीं, उनकी सुनता कौन है? आपने जो राजीव गांधी साहब ने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी आजकल फैमिली चाहती है ना कि उनको मुगलों की तरह उनको बादशाह बनाया जाए, उन्होंने क्या किया एक औरत के लिए? शाहबानों का केस, शाहबानों का था, अब है लोगों की गर्दनें झुकी भी होनी चाहिए इस मुल्क में जो बैठ के मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं कि वोट मिल जाए हमें किसी तरह। औरत को कौन पूछता है? तो वैसे बुरके में पड़ी, आप देखिएगा यूपी में इलेक्शन के अंदर नतीजे कैसे आएंगे, जो बुरके वाली औरतें क्या कह रही हैं।
आप सलमान
जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपको कैसे लगते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? आप इतने दिनों से यहाँ हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्पीचेस, और
देखिए
एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर,
मतलब मैं इलेक्शन में उनको वोट तो नहीं देता, बट ही इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेस है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो दिल्ली की इलीट को बहुत चिढ़ाते हैं, और उनको आज तक किसी ने जो आपकी जो जो वाइन ड्रिंकिंग और सिगार स्मोकिंग जो अपर क्लास इंग्लिश इलीट है उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो अवतार कहते हैं ये चाय वाला, उसमें ये जो मिलीनियर मार्क्सिस्ट है इंडिया के आजकल के, आजकल तो यहाँ कम्युनिस्ट कोई होता ही नहीं जो गरीब हो, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आम आदमी कहाँ से आ गया है।
कभी मुलाकात हुई आप
ऐसे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब से तो नहीं हुई है, बट
मिलना चाहेंगे आप?
कोई उससे फर्क, बहुत लोग मिलते हैं किसी को याद भी नहीं रहता कौन किससे मिलता है।
आखिरी सवाल,
बिल्कुल जरूर जरूर,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मेरा एक सवाल, जब मैं घर से चला तो किसी दोस्त ने कहा कि तारिक साहब से यही सवाल कर लेना कि क्या अगर आपका नाम ताराचंद होता तो यहाँ रहते और इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ बोलते तो आपको इस मुल्क में आप इस तरह से रह सकते थे जैसे
भी? अगर हिंदुओं ने बंटवारा किया होता तो मैं हिंदुओं को कहता, अगर हिंदुओं ने वो हशर किया होता जो 30 लाख मेरे बंगाली भाइयों को मारा होता तो आज मैं उनके खिलाफ होता। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो मानेकशॉ और जनरल अरोड़ा जैसे हीरोज को मैं मानता हूँ, चाहे इंदिरा गांधी थी उससे बड़ी मैं समझता हूँ शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बार बार मिले जिन्होंने खड़े होकर पूरी दुनिया को कहा टू हेल विथ यू।
संडे दिन भर में अभी आप सुन रहे थे तारिक फतेह से बातचीत। मन कर रहा है कुछ लिखने का तो हमारा पता नोट करें, BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और चाहें तो ईमेल के जरिए अपने मन की बात हम तक पहुंचाएं। पता नोट करें hindi.letters@bbc.co.uk। और अब खेल की खबरें। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं। खेल की दुनिया में बहुत कुछ हलचल हो रही है आज।
जी संदीप, आखिरकार हॉकी इंडिया लीग का 5वां सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है और आज इसका फाइनल मुकाबला कलिंगा लांसर्स और दबंग मुंबई के बीच खेला जा रहा है। फिलहाल कलिंगा 2-0 से आगे है। उधर एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों पुणे में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 333 रनों से मिली करारी हार के बाद आलोचनाओं के घेरे में है, वहीं दूसरी तरफ भारत के कप्तान विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। उनके अलावा ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की सूची में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। पहले टेस्ट मैच में हार के बावजूद भारत की टीम रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है और वो अभी भी पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट लीग में उनका जलवा बरकरार है। कल खेले गए मुकाबले में शाहिद अफरीदी के नाबाद 45 रन की मदद से पेशेवर जालानी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 2 विकेट से हरा दिया। क्वेटा ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केविन पीटरसन के 41 और रिली रोसो के 38 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 128 रन बनाए जबकि पेशेवर ने जीत के लिए 129 रनों का लक्ष्य 19.2 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पेशेवर की टीम में शाहिद अफरीदी के अलावा बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और वेस्टइंडीज के डेरिन सेमी भी खेल रहे हैं जो पेशेवर के कप्तान भी हैं। इसके अलावा कल ही वेस्टइंडीज के किरेन पोलार्ड के आखिरी गेंद पर लगाए गए छक्के ने कराची किंग्स को लाहौर पर 5 विकेट से जीत दिला दी। दरअसल कराची को जीत के लिए 156 रन बनाने थे जो उसने पोलार्ड के नाबाद 45, कुमार संगकारा के 20 और बाबर आजम के 49 रनों की मदद से पूरे 20 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले लाहौर ने कप्तान ब्रैंडन मैकुलम के 31 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट लीग में देसी और विदेशी खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। अब देखना सिर्फ इतना है कि फाइनल मुकाबला जो कि पाकिस्तान में खेला जाना है वो वहां पर होता है या नहीं,
रहेगी इस पर भी हमारी नजर। और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, सुनते हैं एक बार फिर मुख्य समाचार।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। भारतीय सेना में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में एक आंतरिक जांच शुरू करने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र और गोवा में अब तक पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। नागपुर, अहमदनगर, अहमदाबाद और गोवा समेत 6 जगहों पर परीक्षा टाली गई। गुजरात में एंटी टेरर स्क्वाड ने राजकोट और भावनगर में 2 भाइयों को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से कथित संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया है। ATS का कहना है कि गुजरात में धार्मिक स्थलों पर हमले की योजना बना रहे थे। इराकी सेना ने पश्चिमी मोसूल में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से 2 जिलों को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो का जिम्मा संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। हमारा अगला प्रसारण आप जानते हैं सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत, तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को विदा दें। bbchindi.com है आपके साथ। नमस्कार।